نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الانفال کو دیکھ رہے تھے اس میں اب ہم کریں گے اہم کلیدی الفاظ اور مضامین یعنی کلید کہتے ہیں چابی کو چابی لگائیں تو بہت بڑے بڑے خزانے کھل جاتے ہیں نا تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ میں جا کر اصل سمجھ آ جائے تو ہمیں اس بات کو سننا آسان ہوتا ہے تو کتابی ربط سے مراد کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں نا تو اب اس کا ہم آگے دیکھیں گے اہم الفاظ کی وضاحت آپ کہہ لیجئے کہ سورت میں سے کچھ الفاظ جو بہت اہم ہیں اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے مغفرتم و رزق کریم آپ نے خلاصے میں بھی دیکھا کہ اس سورت میں یہ مغفرت اور رزق کریم کی بات بہت ہو رہی ہے کیا پتہ چلا کہ گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت والا رزق قوموں کو تب ملتا ہے جب وہ اللہ کے رستے میں پیش آنے والے ہر خطرے کو نپٹنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد تک کی بھی نوبت آئے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹیں سورۃ الانفال میں مغفرتم و رزق کریم کے الفاظ دو مرتبہ پہلے اور آخری پیراگراف میں یعنی آیت 4 اور 74 میں استعمال ہوئے جیسا کہ قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ہے کہ اس کی اکثر صورتوں میں اہم مضمون کو ابتدا اور اختتام دونوں مقامات پر لایا جاتا ہے جیسے بریکٹس ہوتی ہیں نا اس کے شروع اور آخر میں ایک مضمون پڑا ہوتا ہے تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ اکثر صورتوں کا شروع اور آخر ایک ہی ہوتا ہے معلوم ہوا کہ جہاد کے نتیجے میں نہ صرف اخروی مغفرت بلکہ دنیا میں عزت کی روٹی بھی حاصل ہوتی ہے جان کی بازی لگا دینے والے ان مجاہدین کو سچے مومنین یعنی ہم المومنون حقا یہی ہیں ایمان والے سچے اس نام سے پکارا گیا پھر دوسرا اولائک ہم المومنون حقا لہم درجات عند ربہم و مغفرت و رزق کریم کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور رزق کریم ہے آیت 4 میں اسی طرح آیت 74 والذین آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا و نصروا اولائک ہم المومنون حقا لہم مغفرت و رزق کریم آیت نمبر 4 میں بھی یہی بات تھی اور اب 74 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوبارہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ مغفرت اور رزق کریم انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو بنیادی مضمون ہے اس سورت کا وہ کیا ہے جنگ بدر کو حق اور باطل کی جنگ قرار دیا گیا مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا سامنا تجارتی قافلے سے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا ٹکراؤ عسکری لشکر سے ہو عسکری کیا ہوتا ہے تجارتی تو سب کو پتا ہے نا جس میں سامان تجارت تھا ابو سفیان کا جو لشکر تھا لیکن عسکری لشکر جس پہ ہتھیار ہوں یعنی ابو جاہل والا گروہ جو تھا تاکہ اسلام کی سچائی ثابت ہو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ آیت 7 کیا پتہ چلا اور جب اللہ وعدہ کرتا تھا تم سے دونوں میں سے ایک جماعت کا یہ جو لفظ ہے نا احدى الطائفتين اس سے مراد ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہیں ملے گی مطلب کیا ہے کہ ابو سفیان یا ابو جہل کے گروہ سے سامنا ہوگا بے شک یہ تمہارے لیے ہوگی اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹوں والی یعنی بغیر مشکلوں والی چیز مل جائے لیکن اللہ تو اپنے دین کو ثابت کرتا ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے بعض دفعہ اللہ ہمیں مشکل حالات میں ڈالتا ہے جبکہ ہم آسانیوں کے طلبگار اور امیدوار ہوتے ہیں کیوں تاکہ اللہ ہمارے اندر کا ٹیلنٹ کھول کے باہر رہے بلیف میں اگر آج بھی ہم پہ آسانیاں آ جائیں تو ہم ڈھیلے ہو جائیں سست ہو جائیں اور ہم ہو سکتا ہے ادھر ہی کھو جائیں جہاں دنیا کی اکثریت کھوئی ہوئی ہے تو وہ مشکلیں آزمائشیں وہ بیماریاں وہ تکلیفیں اچھی ہیں ان آسائشوں اور آسانیوں سے جس میں بندہ اللہ سے دور ہو جائے لیکن مشکلات میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو آیت 7 سے یہ پتہ چلا کہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سچ کرواتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مشرک و مجرم کی عادت کی ناگواری کے باوجود دین حق کی حقانیت اور باطل کا بطلان واضح اور نمایاں ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کفار کی کمزوری اور مسلمانوں کی طاقت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا یہ ہے اس کا آسان ترجمہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ ثابت ہو جائے حق اور باطل ہو جائے باطل اور اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے کام کرتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرتا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوتا ہے हमें लग रहा था कि हम अपने हालात और अपने असबाब के मुताबिक नतायज पैदा करेंगे। याद रखिए, ऐसा नहीं होता। नतायज अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत के मुताबिक होते हैं। फिर इसी तरह कुरैश की मुशरिक क़यादत भी यही चाहती थी कि हक वाज़े हो जाए। चुनाच उन्होंने खुद ये दुआ की थी, वह इस क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक मिन इंदिका फ़ाम्तिर अलैना हिजारतुम मिनस्समा। और जब उन्होंने कहा है अल्लाह, अगर ये है हक तेरी तरफ से है, बस हम पर बिरसा दे पत्थर आसमान से। ये किसने कहा था जुमला? अबू जहल के जहल, अबू जहल ने कहा था, ठीक है, क्योंकि उसको इतना यकीन था अपने हक पे होने का कि काबे का पर्दा थाम के कह रहा है कि अल्लाह जो हम हक पे उसकी मदद कर दे, जो सिला रहमी करता है उसकी मदद कर दे। उसका ख्याल था हम में सिला रहमियाँ करने वाले जो गुनाहों और गलत कामों में भी अपने रिश्तेदारों की मदद करके कहते हैं जी रिश्तेदारियों के हक अदा कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि अल्लाह का नबी कितना बड़ा सिला रहमी करने वाला शख्स है कि जो रिश्तेदारों के साथ असल उनकी मदद कर रहा है, और वो क्या कि उनको अल्लाह की पकड़ से या अजाब से बचा कर जन्नत में दाखिल करने की कोशिश है। तो बहरहाल इससे पता चला कि अल्लाह ताला अपने काम करवा लेता है। आयत 32 थी। फिर तीसरी चीज़ यह कि सूरत अनफाल में मैदान जिहाद की तस्बीत यानी साबित कदमी का बयान है। क्या पता चला? किसी भी मैदान में, देखिए मैदान जिहाद ज़रूरी नहीं कि तीर तलवार हो, ऑफकोर्स अपनी असल के अतबार से तो यही होगा, लेकिन ज़िंदगी का वो मैदान जिसमें आप अल्लाह के नाम पे उठते हैं, सबसे पहले ये इल्मी मैदान होता है, सीखने का होता है, फिर सिखाने का होता है, सीखने का होता है, फिर इस रास्ते की मुश्किलात है, इसमें साबित कदम कौन रहता है? इंतहाई अहम मौजू है। दीन का काम करने के लिए उठने वाले बहुत सारे होते हैं, पूरा करके बैठने वाले बहुत थोड़े होते हैं। कुरान सीखने की नीयत करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाते। हर साल जब कोर्स शुरू होते हैं तो नए से नए पत्ते लगते हैं। आजकल दिन रात माशाल्लाह ऑनलाइन ऑन साइट, फिर इसी तरह डिफरेंट मुल्कों में चलते हैं, और शुरू में वो ज़रूर मुझे मौका भी देते हैं और मैं बात करती हूँ और उन साथियों को देख रही होती हूँ, तो मैं ये दुआ कर रही होती हूँ अल्लाह इनको जमा देना। कई सैकड़ों में लिस्टें होती हैं जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं, लेकिन बाद में एंड पे जमते हैं तो उसमें सिर्फ मोर देन 50% लोग नहीं जमते। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह साबित कदम रखे। क्या चीज़ साबित कदम रखती है, इसको देखिएगा। सूरत अनफाल में कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने मैदान जंग में साबित कदमी के एहसान का जिक्र किया और साबित कदमी की हिदायत भी दी। अल्लाह ताला ने ऐन जंग से पहले मुसलमानों पर ऐसी ऊंग तारी कर दी कि बेदार होते ही वो खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगे। इस युगशी कुमन नुआस अमनतम मिन हो जी करिए इसका तर्जमान। अमन तमिन हु, अमन था उसकी तरफ से, यानी अल्लाह ने अपनी तरफ से अमन दे दिया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी बारिश नाजिल फरमाई जिससे शैतान की गंदगी का खात्मा हो गया, मुसलमानों के दिल जुड़ गए। चुनाचे बारिश की वजह से मैदान जंग में इनके कदम मजबूत हो गए। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाई मान लियुतहिरकुम बिही वयुज़हिबानकुम रिज़्ज़ शैतानी वलियर्बिता अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। जी आप कीजिए।
और वो नाजिल करता है अलैकुम तुम पर मिन समाई आसमान से मान पानी ली युतखिरकुम ताके पाक करे तुम्हें बिही इसके साथ युज़हिबा और दूर कर दे अनकुम तुमसे रिज़्ज़ा गंदगी शैतान शैतान की वाली यार बितु ताके मजबूत कर दे अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिल वायुसब बेता और साबित कदम रखे बिही इसके जरिए अकदाम कदमों को।
जी यदि साबित रख दे इसके ज़रिए कदमों को, यानी एक ही बारिश से इतने मुख्तलिफ फ़ायदे हुए थे। मुसलमानों के दिलों से रंजिशें निकल गईं, खौफ दूर हो गया, जिस्मानी तहारत हासिल हुई और पानी से मट्टी जम गई तो मुसलमानों के कदम भी जमे, और कुफार के इलाकों में पानी भर गया तो उनके कदम फिसलने लगे। अल्लाह तो एक पानी से इतने काम ले ले, उसको आपके मेरे के काम की क्या ज़रूरत है? तो इससे पता चलता है कि अल्लाह अपने काम ले लेता है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो मैदान जंग में मुसलमानों को साबित कदम रखे। इस यू ही रब्बु कैल मलाइकती नी माकुम फसबितुल्लज़ीना आमनो। जी आप कीजिएगा। साबित कदम रखो, फसबितु ना हुक्म है, खुद नहीं रहो बल्कि तुम रखो किन को? अल्लज़ीना आमनो, ईमान वालों को। यानी फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे थे कि तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो। ठीक है, पता क्या चला कि जहाँ इंसान नहीं होते अल्लाह वहाँ फरिश्तों से काम ले लेता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिदायत की कि वो मैदान जंग में दुश्मन से मुठ भीड़ होने पर साबित कदमी का मुजाहरा करें और इस मौके पर भी अल्लाह को कसरत से याद करते रहें ताकि कामयाबी यकीनी बनाई जा सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, आयत 45। क्या पता चला कि अल्लाह का जिक्र दिलों को जमाता है और इंसान अल्लाह पर नज़रें लगा दे। फिर इसके बाद सूरत अनफाल में एक लफ्ज़ आया फशला, ये क्या है? फशल किसको कहते हैं? लफशल तुम, पाँव का फिसल जाना, जिसको आप टंग स्लिप कहते हैं ना, इस तरह फुट स्लिप। सूरत अनफाल की दो आयात यानी 43 और 46 में यानी कमज़ोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला मैदान जंग में मुसलमानों को हर किस्म की कमज़ोरियों से महफूज रखना चाहते हैं ताकि वो साबित कदमी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करें। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में मुशरिकीन मक्का की तादाद को कम करके दिखाया, वरना मुसलमान कमज़ोरी दिखाते और इताते नज़्म के मामले में तनाज़े का शिकार होते। ये बड़ी अहम बात है, इताते नज़्म। इताते नज़्म क्या होता है? डिसिप्लिन कायम रहता है जब सारे लीडर की बात मानते हैं। अगर कुछ माने कुछ ना माने तो सारा सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अल्लाह के नबी के सहाबा सहाबा थे लेकिन इंसान थे, मुमकिन था कि उनके अंदर भी कुछ इस तरह की बेरब्तगी आती, लेकिन अल्लाह ताला उनको ऐन वक्त पे थाम लेता था। इस जुरी कहुमुल्लाह फी मनामिका कलीलम वलव अराकहुम कसीरन लफशिलतुम वलतनाज़ातुम फिल अम्री, आयत 43। इस जुरी कहुमुल्लाह फी मनामिका कलीला, जब दिखाया तुझको उन्हें यानी का तू देख रहा था, हम किसको देख रहा था, हम उनको दिखाया किसने, अल्लाह, जब दिखाया तुझको उनको अल्लाह ने यानी तुम्हें दिखाया वो लोग, समझ आ रहे, एक लफ्ज़ से भी मानी बदल जाता है, तो आपके नींद में थोड़ा वलव रा कहूँ कसीरन, और अगर वो दिखाता तुझको वो लोग ज़्यादा, बात वाज़ है, लफशिल तुम अलबत्ता तुम कमज़ोरी करते यानी सुस्त पड़ जाते, बोले तनाज़ा तुम और अलबत्ता तुम तनाज़ा करते फिल अमरी कामों में यानी झगड़े शुरू हो जाते। मुसलमानों को हिदायत की गई कि वो अल्लाह और रसूल की इताअत करें, समो इताअत के निज़ाम पर अमल करें, तनाज़ात से बचें, वरना नज़्म की कमज़ोरी से मुसलमानों की हवा उखड़ जाएगी। जंग में साबित कदमी का मुतालबा किया गया और बशारत दी गई कि साबित कदम मुजाहिदीन के साथ अल्लाह की मदद होगी। कहाँ लिखा है? 46 आयत, वातीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ौ फतफशलु व तस्खबरी हुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मा साबिरीन, और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की, और ना तुम तनाज़ा करो वरना तुम सुस्त हो जाओगे और निकल जाएगी हवा तुम्हारी यानी तुम्हारा रोब दिलों से निकल जाएगा, और सब्र करो बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। 46। तो खुलासा क्या निकला कि मुसलमानों को आपस के अंदर इख्तलाफात में नहीं पड़ना, सुस्ती नहीं करनी और इताअत करनी है। जितना रूल्स को ओबे करेगा कोई भी गिरोह, उतना वो इदारा वो तहरीक कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशन तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, और एक उम्मत भी उसी वक्त उम्मत बनती है जब वो बात मानती है। फिर इसके बाद सूरत अनफाल में अतीउल्लाह व रसूलहु का बार बार हुक्म है। सूरत अनफाल में बार बार अल्लाह और रसूल की इताअत के अहकाम दिए गए ताकि मुसलमान तहरीक के अगले मरहलों में कामयाब रहें। तो आज फिर किस चीज़ की ज़रूरत है कामयाब होने के लिए? अतीउल्लाह व रसूलहु। मुसलमानों को बताया गया कि सच्चे और खालिस ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह और रसूल की इताअत की जाए, अल्लाह का तकवा इख्तियार किया जाए और मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात को दुरुस्त रखने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए। फत्तकुल्लाह वस्लिहु ज़ात बैनिकुम वअतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन, बस अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो और अतात करो अल्लाह और उसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो। पहली आयत में देखिए क्या हुक्म है, तकवा अल्लाह का और आपस के ताल्लुकात की इस्लाह और अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, ये तीन बड़े बुनियादी फैक्टर हैं टीम वर्क के, किसी भी जगह काम के सही होने की ये बुनियादें हैं। तकवा अल्लाह का यानी वो काम किसी इंसान के डर से नहीं करना और उसका रिवॉर्ड किसी इंसान से नहीं लेना, अल्लाह से लेना है। आपस में अच्छे रहें, याद रखिए बरकत ख़त्म हो जाती है जब दिल खट्टे हो जाते हैं। बेबरकती की बहुत बड़ी वजह दिलों का दूर होना, और फिर अतीउल्लाह और अतीउ रसूल तो है ही है। यही असूल आज उम्मत पे चलेगा, यही असूल आज हर मौके पे चलेगा। अल्लाह हमें एक उम्मत होने के नाते इन तीनों अहकाम पे अमल की तौफीक दें। फिर इसके बाद देखिए मुसलमानों के अजहान, अजहान क्या होता है? जहन की जमा, और कुलूब कल्ब की जमा। मुसलमानों के अजहानों कुलूब में ये बात रासे की गई कि अल्लाह और रसूल की पुकार पर इन्हें लब्बैक कहना चाहिए, इसी पर इनकी ज़िंदगी और बका का इन्हिसार है। या अय्युहल लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, आयत 24। बड़ी खूबसूरत आयत है इस सूरत की, और आपको इसकी ज़रूर समझ होनी चाहिए। इस पर कई बार दर्स भी हुए। क्या ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कबूल करो अल्लाह और उसके रसूल की दावत को जब वो तुमको पुकारें, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। यानी दावत में और जिहाद में ज़िंदगी है। जब तक मुसलमान दावत इल्लाह का काम करते रहते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं, वो कौम होने के नाते ज़िंदा रहते हैं। उम्मत में ज़िंदगी की रूह फूकती है इन कामों से। जब उम्मत सुस्त हो जाती है तो फिर वही होता है जो कि आज कमोबेश कहीं ना कहीं हो रहा है। फिर इसके बाद अल्लाह और रसूल के अहकामात को सुनकर इनकी बेचूनो चराए इताअत की हिदायत की गई, और नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का सबक सिखाया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम तस्मऊन, आयत 20। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और मत मुंह फेरो उससे और तुम सुनते हो। आप देखिए कितना जिक्र है अतीउल्लाह और अती रसूल का, और जंगों में है तो आम हालात में नहीं होगा। और अक्सर देखा जा रहा है कि आज हमारी ज़िंदगी का हर अहम मौका, खुशी का अहम दिन अल्लाह की नाफरमानी से गुजरता। ऐसे दिल में ख्याल आ रहा था कि एक दिन शहर में कितनी शादियां होती हैं, कोई भी शहर अपना ले लीजिए, कमो बेश इल्ला माशाल्लाह वहाँ नाफरमानियाँ होती हैं। यानी जब ये कल्चर, लाइफस्टाइल, मजबूरी, तौर तरीका, ख़ानदानी रस्म व रिवाज, बच्चों का खौफ, ससुराल का खौफ, माँ ये कहते लड़की कहते लड़के वाले कहते, इन नामों पे नाफरमानियाँ होंगी तो उस उम्मत में खैर कैसे आएगी। और ये भी देख रहे हैं कि इसका नतीजा कोई खुशी नहीं है, इसका नतीजा अपनी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें हैं, और उम्मत होने के नाते तो इस वक्त हम वाकई आजमाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अतीउल्लाह रसूल की तौफीक अता फरमाए। फिर मुसलमानों को यहूद की रविश अख्तियार करने से रोका गया, जो अहकाम को सुनते थे लेकिन इन पर अमल नहीं करते थे। वला तकूनु कल्लज़ीन क़ालू समेना वहुम ला यस्मऊन, आयत 21। और मत हो जाओ उन लोगों की तरह जो कहते तो हैं कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुन रहे होते। अल्लाह हमें ऐसा सुनने से भी रोक ले। अच्छा सुनवाए, अच्छी तरह सुने और फिर अमल भी करें, सुन सुन के सुन ना हो जाए। फिर सुनी कर अनसुनी करने वालों को बदतरीन मखलूकात से तशबीह दी गई, जो अक्ल, समात और गोयाई से महरूम होते हैं। इन्न शर्रु दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीन ला याकिलून, बेशक बदतरीन चौपाए, दवाब दाबत उनकी जमा, क्रिएचर चलने फिरने वाला, अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, बुकमन गूंगे हैं और वो अकल भी नहीं रखते, आयत 22। देखिए इससे भी ज़्यादा कोई बुरी तशबीह हो सकती है। तो जो लोग अकल का इस्तेमाल ना करें, आंखों को ठीक तरह से ना इस्तेमाल करें, कानों से ठीक ना सुने, उनके ऊपर ये आयत फिट होती है। फिर इसी तरह समा इतात, सब्र, इस्तकामत और मजबूत नज्म ही के नतीजे में मुसलमानों का रोब कायम हो सकता है और अल्लाह की मदद हासिल हो सकती है। वतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तस्ख़बरीहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअ सबिरीन, आयत 46। और अल्लाह और रसूल की इताअत करो और आपस में ना झगड़ो, बस सुस्त हो जाओ अगर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, बस सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। ऊपर भी ये बात हुई। फिर छठी चीज़ सूरत अनफाल में के फ़लसफ़ाए इज्तमा की वजाहत। इज्तमा क्या होता है? जमा होना। सूरत अनफाल की आयत 25 में इस्लाम के फ़लसफ़ा इज्तमा की वजाहत भी मिलती है। जिहाद के ज़रिए फितना और फसाद का खात्मा एक इज्तमाई नागुज़ीर ज़रूरत है। बाज़ फितने ऐसे आम होते हैं कि जिनकी सज़ा ज़ालिमों के अलावा खामोश तमाशाइयों को भी मिलती है। क़्यादत के जरायम की सज़ा अवामुन्नास को मिलती है। फरमाएगा वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासा, आयत 25। क्या पता चला आपको इसमें क्या समझ आना चाहिए? कि आपके मेरे ज़ाती अमल, इनफरादी आमाल, इसकी सज़ा बाज़ दफ़ा इज्तमाई तौर पे मिलती है। देखिए घर में गैस खुली रह जाए, किसी एक से गलती हुई ना, किसी ने माचिस जला दी, ये दूसरे की गलती थी, घर जलेगा तो सब का नुकसान होगा। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इन अफराद की ख़ताओं से दरगुजर कर लेता है, लेकिन जब सारी कौम का वो शुआर बन जाए तो फिर अल्लाह उसको नहीं पक छोड़ता। तो मेरी आपकी गलत चीज़ों का असर सिर्फ मुझ पे नहीं पड़ता, कोई बाहर से आए उसके पसीने की स्मेल आ रही हो तो क्या सबको नहीं वो भुगतनी पड़ेगी? हम अपने इर्द गिर्द वालों की गलत चीज़ों की सज़ा भुगत रहे होते हैं, तो अपने ऊपर ना रहम करें हम, दूसरों पे तो कर दें जो हमारे इर्द गिर्द हैं। پھر سورت انفال میں خیانت سے بچنے کا بھی حکم ہے. مسلمانوں کو خود بھی خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا اور دشمن قوموں کی خیانت سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا. مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے اور امانتوں میں خیانت سے منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. آیت 27. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں کی جبکہ تم جانتے ہو. یعنی نہ انسانوں کو دھوکے دو, نہ کمی بیشی کرو, خیانت کرو اور نہ اللہ اور رسول کی. اللہ اور رسول کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ احکامات پہ عمل نہ کر کے, اور جو چیزیں روکی گئی ہیں اس سے رک نہ کے. اور آپس میں تو خیانتوں کی بے شمار قسمیں, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تعلقات میں, معاملات میں, لین دین میں, چیزوں میں یہ خیانتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اسلام کی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں یہ وضاحت کی گئی کہ جو بد دیانت اور خائن قوم معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتی, اس کے ساتھ اسلامی ریاست کو بھی اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے, اور معاہدہ شکنی کی صورت میں معاہدے کو منسوخ کر دینا چاہیے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. آیت 58 ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا, یعنی آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ کوئی آپ سے خیانت کر دے گا, معاہدہ توڑ دے گا, آگے جا کے آپ کو چھوڑ دے گا, تو آپ پہلے توڑ دیں, یہ مراد ہے. فم بز الحم, ان کا عہد ان کے اوپر دے دیجئے. کیا پتہ چلا کہ اسلام آپ کو مجھے بیوقوف بننا نہیں سکھاتا, بلکہ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھ کر جینا سکھاتا ہے. یہ آیت 58 تھی. پھر اسی طرح سورت انفال میں لفظ فتنہ کے استعمال کی معنویت, یعنی فتنے کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. سورت الانفال میں فتنے کا استعمال بہت ہی معنی خیز ہے. اس سلسلے میں 3 آیات مثال کے لیے یہاں رکھی گئی ہیں. دیکھیے گا, نمبر 1, سورت انفال میں لفظ فتنہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایک ناگزیر عمل جراحی قرار دیا. عمل جراحی کیا ہوتا جی؟ ڈیسیکشن, یعنی چیر پھاڑ کرنا. کب کسی مریض کے جسم کو چیرا پھاڑا جاتا ہے؟ جب اور کوئی حل نہیں ہوتا. کیا پہلے دن جا کر کسی کی ٹانگ کوئی کاٹتا ہے؟ نہیں. ٹانگ کب کاٹی جاتی ہے؟ جب ٹانگ کی موجودگی سارے جسم کو متاثر کرے. ٹانگ کا زہر یا کینسر بڑھ کر دل تک پہنچ جائے اور بندہ مر جائے, بات واضح ہے؟ تو عمل جراحی ہے جہاد, سمجھ آ رہے؟ صرف ایک اس جملے کو سمجھ لیں, کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. جہاد تب ہوگا جب دوسری چیزیں ناکام ہو گئیں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر دیکھیں, جہاد انسانیت کے لیے رحمت ہے. جس طرح انسان کی جان بچانے کے لیے بعض اوقات آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے, اسی طرح قوموں کی زندگی کے لیے بھی بعض اوقات جہاد لازمی قرار دیے جاتے ہیں اور ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ زمین پر فتنے جنم لیتے ہیں اور فساد کبیر برپا ہو جاتا ہے. کیسے؟ عمل جہاد کے ذریعے قوموں کے جسم سے فتنہ و فساد کے سرطان یعنی کینسر کی بے کنی کی جاتی ہے. الا تفلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا زمین میں اور فساد کبیر ہوگا, بہت بڑا فساد ہوگا. آیت 73 ہے. تو بات سمجھیے گا, جو لوگ جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھئے, پھر اپنے ہی جیسے انسانوں کی ٹانگ کیوں کٹوا دیتے ہیں؟ ان کا آپریشن کیوں کرواتے ہیں؟ ان کو اتنے تکلیف دہ مراحل سے کیوں گزارتے ہو؟ سب جانتے ہیں کوئی ڈاکٹر ایسے ہی جا کر ایک دم آپریشن نہیں کر دیتا, تو کوئی لیڈر ایک دم جا کر کٹا پھٹی کی باتیں نہیں کرے گا. اس کے لیے ضرورت ہوگی اس بات کی کہ وہ اس کو پہلے دیکھے. کوئی اور حل نہیں ہے, یعنی کہہ لیجئے کہ دیر از اے لاسٹ چوائس, تو پھر جہاد ہوگا. پھر جہاد کے سلسلے میں یہ فلسفہ رسول بیان کیا گیا کہ جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک فتنے کا پوری طرح استحصال. استحصال کیا ہوتا ہے؟ جڑ کٹ جانا. اصل کہتے ہیں جڑ کو, سواد سے, حمزہ سواد لام. تو استحصال کسی کی جڑ ہی طلب کر لی آپ نے, اور اللہ کی حاکمیت یعنی دین دنیا پر پوری طرح نافذ نہیں ہو جاتا. دو باتیں لکھ لیں, جہاد کب فرض ہوتا ہے, نمبر 1 فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ پرسیکویشن, کسی کو اس کے دین پر عمل سے روکنا. آج دیکھیں دن بدن مسلمانوں پہ مذہبی پابندیاں لگتی جا رہی ہیں نا, ان کے بیسکس جو ہیں وہ نہیں عمل کرنے دے رہے. اب یہ ایک دن دو دن ہے, ایک دو لوگ ہیں, لوگ فوراً ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں. हालांकि आप देखिए, ज़रा सी दुनिया की किसी चीज़ की बात आए, जाकर ये तोड़ा फोड़ी मुआहदे। आज तक मुसलमानों को मैंने कम ही देखा है कि आप पे लगी हुई किसी पाबंदी के ख़िलाफ़ बातें करें। ठीक है, पिटीशंस भेजें, ये लिंक आगे कर दें, वो कर दें, लेकिन अमली तौर पे याद रखिए, दुनिया में किसी को किसी के मज़हब को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे लोगों से मुसलमान हुक्मरानों को इज्तमाईत के साथ बात करने की ज़रूरत है। पहले उनसे बात करें, भाई आप हम पे ये क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, हम आपको इसका क्या नुकसान दे रहे हैं, और फलां और फलां, ये और वो। इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह जरूरत भी नहीं होगी। पानी हमेशा उधर बहता है जहाँ ढलान होती है। हम मुसलमान जितना दबेंगे, जितना डरेंगे, उतने हम पे रूल सख्त होंगे, पाबंदियाँ लगेंगी, हमें हमारे दीन पे अमल नहीं करने दिया जाएगा। इसका हल क्या है? तरीके से, सुकून से, अच्छे तरीके से उन तक बात पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप वो काम करें। जब सारे करेंगे तो कौन आपके मुंह लगेगा? दो चार लोग करते हैं तो फिर वो कहते हैं इन्होंने क्या कहना है। मुखालफत का डर इंसान को रोक लेता है, कई गलत कामों से लोग रुक नहीं जाते पीयर प्रेशर में आके। तो हमेशा आप याद रखिए, जब मुसलमानों पर पाबंदियाँ लगें, इल्ज़ाम लगें, तो उस वक्त काम छोड़ना नहीं है, वो और लोग करें, ताकि वो कहें कि ये तो अब सारे कर रहे हैं, हम कैसे इनका मुकाबला करें। फिर इसी तरह से देखिएगा, दीन का नाफिज होना, अद्दीन, अल्लाह का दीन नाफिज। और वो क्या है? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद करना, अल्लाह के निजाम को नाफिज करना, ये एक बहुत बड़ी तहरीक है जिहाद के लिए। अल्लाह ताला पहले हमें अपने दीन पे अमल की तौफीक दे, फिर हम दूसरों के दीन की भी फिक्र करें। मैदान जिहाद में मकसद जिहाद को सबसे ज़्यादा वलियत हासिल होती है, इसको हाईलाइट करें। मैदान जिहाद में सबसे अहम चीज़ क्या है? किस मकसद से लड़ रहे हो? देखिए, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी का माल हथियार है, कोई चुरा रहा है, वो बड़ा बुरा मकसद है। और कोई किसी की इज्जत जान बचाने के लिए लड़ता है। मूसा ने मदद की, मुक्का मारा, किसी की मदद के लिए किया था ना, तो मकसद इज़ इम्पॉर्टेंट। माल और औलाद की मोहब्बत, अगर अल्लाह की मोहब्बत और मकसद जिहाद पर गालिब आ जाए तो इंसान फितने का शिकार हो जाता है। ये भी बड़ी अहम बात है। मैदान जंग में ही जाकर या जिहाद के टॉपिक में ये समझ आता है कि औलाद और माल ज़्यादा प्यारे हैं या अल्लाह का हुक्म। वालम अन्नम अम वालकुम व औलादकुम फितना व अल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। खूब जान लो कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें आजमाइश हैं। फितना किसको कहते हैं? वो चीज़ जो खैर की हो लेकिन गलत इस्तेमाल उसको बिगाड़ दे। बस आप देखिए कि स्त्री काम की चीज़ है ना, लेकिन आप आगे वाले हिस्से में हाथ डाल लें, हाथ जल जाएगा। बिजली का तार नंगा और स्त्री कर रहे हैं तो स्त्री से आप जल भी सकते हैं, आग भी लग सकती है, करंट लग सकता है। तो औलाद और माल खैर की चीज़ें हैं, सही इस्तेमाल नहीं करते तो आजमाइश बन जाती हैं, या सही तरबियत नहीं करते तो भी यही होता है। वन अल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और बेशक अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। तो ये चंद अहम मजामीन थे इस सूरत के अंदर जो हमने पढ़े। इतनी सेचुरेटेड एंड रिच सूरह है, भरपूर किस्म की सूरत है। आप कह लीजिए कि इस मौजू पे इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और सुनने की ज़रूरत रहती है, कि किस तरीके से अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से मुख्तलिफ जंगें करवाई और उसके ज़रिए से कुफर का ज़ोर टूटा। आज आप देखिए, कुफर का ज़ोर नहीं टूट रहा, इस्लाम का ज़ोर टूट रहा है, क्योंकि आज हम उस मेथडोलॉजी को भूल गए। नबी के उसवे को हमने छोड़ दिया जिसमें कौमों की खैर थी।